भगवान की ह्लादिनी शक्ति की दिव्य अनुभूतियां हैं। यद्यपि राधा तथा कृष्ण अभिन्न हैं, किंतु उन्होंने अपने को अनादि काल से पृथक कर रखा है। अब ये दोनों दिव्य स्वरूप फिर से श्री कृष्ण चैतन्य के रूप में मिलकर एक हो गए हैं। मैं उनको नमस्कार करता हूँ जो साक्षात कृष्ण होते हुए श्रीमती राधा रानी के भाव तथा स्वरूप में प्रकट हुए हैं। तो ये श्लोक बहुत ही महत्वपूर्ण है, अगर हो सके तो हमें कंठस्थ करने का प्रयास करना चाहिए। तो सबसे पहले यहाँ ये बताया जा रहा है कि राधा कृष्ण की लीला ये कोई एक साधारण पुरुष स्त्री के संबंध का वर्णन नहीं है, ये दिव्य है, क्योंकि ये भगवान की अंतरंगा ह्लादिनी शक्ति के अंतर्गत होता है। प्रणय मतलब प्रेम, विकृति मतलब उसका परिवर्तन। तो राधा कृष्ण प्रणय विकृति ह्लादिनी शक्ति रस्माद, तो राधा कृष्ण के जो प्रेममयी लीलाएं हैं वो भगवान श्री कृष्ण के अंतरंगा ह्लादिनी शक्ति के परिवर्तित रूप हैं। ये कोई भौतिक चीज नहीं है। इस दुनिया में किसी पुरुष स्त्री के बीच में जो संबंध होते हैं वो भौतिक होते हैं, परंतु राधा कृष्ण के बारे में ऐसे नहीं कहा जा सकता। राधा कृष्ण की लीलाएं बिल्कुल दिव्य स्तर पे स्थित हैं। एक आत्मनो अपि भुवि पुरा देह भेदम गतौतौ, हालांकि ये एक आत्मा है फिर भी भुवि बहुत पहले से इस पृथ्वी में, बहुत ही पहले से पुरा अनादिकाल से देह भेदम गतौतौ, वो एक होते हुए भी उनका देह भेद हो गया है और वो दो हो गए हैं। वो एक परम सत्य अब दो हो गए, वो दो हैं राधा और कृष्ण। और फिर आगे यहां तीसरे लाइन में कविराज गोस्वामी कहते हैं, चैतन्याख्यम प्रकटम अधुना तद्वयम च ऐक्यम आप्तम। अधुना मतलब अभी अभी जो प्रकट हुए हैं उनका नाम है चैतन्य, चैतन्य आख्यम। और ये क्या है जो अभी अभी प्रकट हुए हैं, चैतन्य महाप्रभु का रूप, च ऐक्यम आप्तम, ये दो जो हैं वो फिर से एक हो गए हैं। तो राधा और कृष्ण एक होकर चैतन्य महाप्रभु के रूप में प्रकट हुए हैं। तो चैतन्य महाप्रभु कौन है? वही श्री कृष्ण है, कृष्ण स्वरूपम, परंतु राधा रानी के भाव और उनके कांति को स्वीकार करके आए हैं। राधा भाव द्युति, द्युति मतलब कांति, राधा भाव द्युति सुवलितम नवमी, नवमी मतलब हम नमन करते हैं कृष्ण स्वरूपम। तो इसके बारे में हम थोड़ा कुछ पिछली बार भी सुन चुके थे और श्रीमती राधा रानी के बारे में भी हम वर्णन सुन चुके हैं पिछली बार कि वास्तव में श्रीमती राधा रानी कौन है। पिछली बार कहां तक हम आगे थे? जरा घुमाइएगा इसको पीछे, पीछे वाले, आगे नहीं पीछे, इसके पहले वाले जो थे, बाद वाले नहीं, पहले वाले, इसके पीछे वाले, श्रीमती राधा रानी कौन है वहां से? नहीं नहीं इसके आगे, आगे चलिए, आगे चलिए, आगे चलिए, इतने पीछे नहीं जाइए, आगे चलिए, इसके आगे आगे, आगे। श्रीमती राधा रानी कौन है? आगे चलिए, आगे चलिए, पीछे नहीं, आगे चलिए। इधर लाएंगे जरा, दिखाइए, एक मिनट इधर ले आइए। लेकर आइए इधर, दूसरे में हो गया, दूसरा कहाँ है? ये समाप्त हो जाने के बाद ये लगा, ये पहले लगा। तो ये विषय अभी जो हम चर्चा करने वाले हैं, जिसका वर्णन कृष्णदास कविराज गोस्वामी यहां करते हैं, वो बहुत ही दुर्लभ है। ये ऐसे सब जगह नहीं पाया जाता। वो श्रीमती राधा रानी के तत्व के बारे में है। श्रीमती राधा रानी कौन है, इस चीज को अच्छी तरह से समझने के लिए सबसे पहले हमें जानना चाहिए कि भगवान श्री कृष्ण की शक्तियां कौन सी हैं। यहाँ माइक है किसी के पास? हाँ, कोई पढ़िएगा।
हरे कृष्ण। श्रीमती राधा रानी कौन है, इसे समझने के लिए हमें कृष्ण की शक्तियों की प्रकृति को समझना होगा।
तो कृष्ण की शक्तियां कौन सी हैं, ये समझे बिना हम श्रीमती राधा रानी को नहीं समझ सकते हैं। तो कौन सी श्री कृष्ण की शक्तियां हैं, जरा देखिए।
कृष्ण की शक्तियां एक अंतरंग और बहिरंग, अंतरंग या आध्यात्मिक, बहिरंग या भौतिक,
और तीसरा भी कोई है ना, कौन सा है? तटस्था शक्ति। तो तटस्था शक्ति को यहां से अलग से क्यों नहीं लिखा गया है, क्योंकि वो अंतरंगा शक्ति के अंतर्गत ही है। तटस्था शक्ति भी आध्यात्मिक है ना, जीवात्मा तो आध्यात्मिक है, इसलिए केवल दो श्रेणियां यहां बताई गई हैं, अंतरंगा शक्ति, बहिरंगा। आ होना चाहिए अंत में, हाँ, केवल अंतरंग नहीं, अंतरंगा शक्ति और बहिरंगा शक्ति। ये तो आप सब जानते हैं, पहले भी चर्चा हो चुकी है कई बार। आध्यात्मिक शक्ति और भौतिक शक्ति, हाँ, घुमाइएगा। अभी कविराज गोस्वामी वर्णन करते हैं कि ये आध्यात्मिक शक्ति क्या है। आध्यात्मिक शक्ति के भी तीन वर्ग होते हैं, पढ़िएगा।
अंतरंगा शक्ति के तीन वर्ग हैं, संधिनी, संबित और लादिनी। संधिनी अस्तित्व पक्ष है, संबित ज्ञान पक्ष है और लादिनी आनंद पक्ष है।
लिखिएगा आप में से जो लिख रहे हैं, ताकि अभी आगे चल के हम विस्तार में चर्चा करेंगे कि ये संधिनी क्या है, संबित क्या है, लादिनी क्या है। इस प्रकार का विश्लेषण और किसी भी ग्रंथ में नहीं मिलता है, कहीं भी आप जाइए। केवल जो चैतन्य महाप्रभु के अनुयायी गण ही ऐसा विश्लेषण करते हैं। तो हम बहुत भाग्यशाली हैं कि हमें इस संप्रदाय में प्रवेश करने का अवसर प्राप्त हुआ है। तो बिना देखे बताइए, अंतरंगा शक्ति के कौन से तीन भाग हैं? पहले से बताइए, पहले संधिनी, फिर संवित और लादिनी। संधिनी क्या है? अस्तित्व पक्ष। अस्तित्व, जो शक्ति भगवान के अस्तित्व को बनाए रखती है, और आगे चर्चा करेंगे हम। और संवित क्या है? ज्ञान पक्ष, ये भी हम चर्चा करेंगे। और लादिनी, आनंद पक्ष। तो आगे चल के देखते हैं कि ये क्या चीजें हैं, ये तीन शक्तियां क्या हैं। हाँ, घुमाइएगा। इनको हमें अच्छी तरह से समझ लेना चाहिए, और परीक्षा में अवश्य पूछे जाने वाले हैं। तो परीक्षा के पेपर आपको अभी बता रहे हैं। हाँ जी, पढ़िएगा।
एकमात्र अंतरंग शक्ति, समान और एक ही अंतरंगा या आध्यात्मिक शक्ति जब भिन्न भिन्न कार्य करती हैं, तब उसे तीन अलग अलग नामों से पुकारा जाता है। वो है अस्तित्व, ज्ञान और आनंद।
इसका मतलब ये है कि भगवान की शक्ति वास्तव में एक ही है। जब वो भौतिक क्षेत्र में कार्य करती है तो उसको भौतिक शक्ति कहते हैं, बहिरंगा शक्ति कहते हैं। मूल शक्ति तो एक है, अंतरंगा शक्ति, जो आध्यात्मिक शक्ति है। और ये आध्यात्मिक शक्ति के जो तीन विभाजन किए गए हैं, वो भी कार्यों के अनुसार। शक्ति एक है, जब अलग अलग कार्य करती है तो उस शक्ति को अलग अलग नाम दिए जाते हैं, बस इतना ही है। एक दृष्टि से देखा जाए तो ये अलग अलग शक्तियां नहीं है। ये संधिनी शक्ति, लादिनी शक्ति, संबित शक्ति, ये एक ही शक्ति के अलग अलग प्राकट्य हैं, जो अलग अलग कार्यों को संपन्न करने के लिए वो अलग अलग तरह से संबोधित किए जाते हैं। जैसे बिजली है, एक ही शक्ति है। जब वो एक हीटर में जाती है तो गर्मी पैदा करती है, कभी कूलर में जाती है तो ठंडक पैदा करती है। शक्ति तो एक ही है, कार्य अलग होते हैं। उसी प्रकार के ये एक अंतरंगा शक्ति के अनेक कार्य होते हैं। तो इन अलग अलग कार्यों के आधार पर अलग अलग ये नाम दिए गए हैं, बस इतना ही है। तो समझने के लिए बहुत आसान है। अभी जो हमने कहा, कोई अपने शब्दों में बताइए। हाँ, यहां भी एक माइक है क्या? एक माइक वहां, एक माइक यहाँ ना, तो वहां भी एक माइक, ठीक है। हाँ, तो भगवान की शक्ति एक है, और आगे बोलिए।
भगवान की शक्ति एक है, समान है, क्यों जब अलग अलग भिन्न भिन्न कार्य करता है वो भिन्न भिन्न नाम में पुकारा जाता है।
तो शक्ति एक है, भिन्न भिन्न कार्यों के हिसाब से भिन्न भिन्न नाम हो जाते हैं, बस इतना ही है। हाँ, आगे घुमाइए। अब संधिनी शक्ति की जानकारी दी जा रही है। कविराज गोस्वामी बहुत विस्तार में हर चीज का विश्लेषण करते हैं, और प्रभुपाद जी के तात्पर्य भी बहुत प्रकाशमान है। हाँ जी,
संधिनी शक्ति, यह वो शक्ति है जिसके द्वारा श्री कृष्ण अपने अस्तित्व को बनाए रखते हैं।
दस सेकंड सोचिए जरा। संधिनी शक्ति क्या है, बिना देखे बताइए। जिसके द्वारा श्री कृष्ण अपने अस्तित्व को बनाए रखते हैं, संधिनी शक्ति। लिख लिया आप सबने? हाँ, घुमाइएगा जरा। हाँ, पढ़िएगा।
संवित शक्ति, इसके द्वारा कृष्ण स्वयं को जानते हैं एवं दूसरों को स्वयं को जानने में सहायता करते हैं।
स्वयं, फिर से पढ़िए।
इसके द्वारा कृष्ण स्वयं को जानते हैं और दूसरों को स्वयं को जानने में सहायता करते हैं।
नहीं, दूसरों को कृष्ण को जानने के लिए सहायता करते हैं।
हाँ, होना चाहिए। नहीं लिखा है दूसरे को स्वयं, मतलब वो स्वयं जो है वो कृष्ण को
पॉइंट ऑफ करना, जो जिस शक्ति के द्वारा कृष्ण अपने आप को जानते हैं और जिस शक्ति के द्वारा हम सब भी कृष्ण को जान सकते हैं, वो है संवित शक्ति। कृष्ण को जाने बिना हम अपने आप को नहीं जान सकते। प्रभुपाद जी इसके लिए उदाहरण दिया करते थे कि जब हम एक आईने में या दर्पण में अपने आप को देखते हैं, तो सबसे पहले हम सूरज की किरणों को देखते हैं, फिर अपने चेहरे को देखते हैं। सूरज की किरणें नहीं होती तो अपने आप को कैसे देख पाते हैं? सूरज की किरणें हैं, हम पहले देखते उजाले को देखते हैं पहले, और फिर अपने आप को देख सकते हैं। तो भगवान सूरज के समान है। तो भगवान का साक्षात्कार किए बिना मैं कौन हूं, ये स्वतंत्र रूप से समझा नहीं जा सकता। इसलिए भगवत साक्षात्कार के अंतर्गत आत्म साक्षात्कार भी आ जाता है। आत्म साक्षात्कार भगवत साक्षात्कार के बिना नहीं हो सकता। सेल्फ रियलाइजेशन एंड गॉड रियलाइजेशन। तो अभी आप बताइएगा, बिना देखे हुए संवित शक्ति क्या है? कौन बताएंगे? हाँ बताइए, माइक माइक में बताइए, अपने शब्दों में, बिना देखे हुए। हाँ,
हरे कृष्ण गुरुजी। इसके द्वारा कृष्ण स्वयं को जानते हैं तथा दूसरों को, अर्थात हमें कृष्ण को समझने में सहायता प्रदान करते हैं।
ये संवित शक्ति है। और कोई बताइए संवित शक्ति क्या है? संवित शक्ति वो शक्ति है,
संवित शक्ति वो शक्ति है जिस शक्ति के माध्यम से कृष्ण आपको आप स्वयं को जानते हैं और दूसरों को भी जानने के लिए सहायता करते हैं।
दूसरों को कृष्ण को जानने के लिए सहायता करते हैं, ठीक है। अच्छा, घुमाइएगा। बलराम अवतार प्रभु का थोड़ा सेवा है अभी खड़ा रह के करना। तो संधिनी और संवित शक्ति का वर्णन हुआ है, अभी लादनी शक्ति।
लादनी शक्ति, इस शक्ति के द्वारा कृष्ण परम आनंद का आस्वादन करते हैं और अपने भक्तों को इस आनंद को लेने में सहायता करते हैं।
लिख लीजिएगा आप। कविराज गोस्वामी बहुत सुंदर ढंग से कहते हैं, लादिनी कौराए कृष्ण आनंद आस्वादन, लादिनी र द्वार करे भक्त र पोषण। लादिनी कौराए कृष्ण आनंद आस्वादन, तो लादिनी शक्ति क्या करती है? कृष्ण को आनंद का आस्वादन कराती है। किस प्रकार का आनंद? दिव्य आनंद। ये भौतिक जगत के आनंद में, तथाकथित आनंद में श्री कृष्ण रमण नहीं करते हैं, तो ये आध्यात्मिक आनंद की बात हो रही है, सच्चे आनंद की बात। तो जो शक्ति श्री कृष्ण को ये दिव्य आनंद प्रदान करने में समर्थ होती है, उसको लादिनी शक्ति कहते हैं। और लादिनी शक्ति का और एक कार्य होता है, लादिनी रथ द्वारा करे भक्तेर पोषण। भक्तों का पोषण भी लादिनी शक्ति से होता है। तो न केवल कृष्ण को आनंद प्राप्त होता है, बल्कि भक्तों को भी आनंद प्राप्त होता है। तो भक्ति करके जो आनंद प्राप्त होता है, वो लादिनी शक्ति का स्वरूप है। ठीक है, प्रभुपाद जी बतला रहे हैं कि इस लादिनी शक्ति के बड़े गहराई से विश्लेषण श्री जीव गोस्वामी ने किया है उनके षट संदर्भों में। और अपने तात्पर्य में प्रभुपाद जी ने बहुत सुंदर ढंग से इन तत्वों को समझाया हुआ है, तो आप भी अवश्य पढ़िएगा। अच्छा, अभी लादिनी शक्ति के बारे में आप कोई बताइए बिना देखे हुए। और कोई जिन्होंने अभी तक नहीं उत्तर दिए? हाँ, माइक दीजिए वहां।
हरे कृष्ण। इस अल्लादिनी शक्ति के द्वारा कृष्ण परम आनंद का आस्वादन करते हैं और भक्तों को इस आनंद आस्वादन करने में सहायता करते हैं।
विशेष करके भक्तों का क्या करते हैं? कौन सा शब्द का इस्तेमाल किया गया है? पोषण। जैसे शरीर का पोषण भोजन लेने से होता, आहार के माध्यम से होता है, उसी प्रकार से जो आत्मा का पोषण है वो कृष्ण भक्ति करने से होता है। तो कृष्ण भक्ति करने से आत्मा का पोषण होता है, अर्थात आत्मा को भी दिव्य आनंद मिल जाता है। तो श्री कृष्ण को आनंद प्रदान करने वाली शक्ति है और जीवात्माओं को भी दिव्य आनंद प्रदान करने वाली शक्ति है लादिनी शक्ति। अभी थोड़े विस्तार में इन तीन शक्तियों की चर्चा करेंगे। अभी केवल मूल परिभाषा दी है आपको इन तीन शक्तियों की, अब थोड़े और विस्तार में चर्चा करते हैं। ये लिख लिया सबने? ठीक है, घुमाइए। अभी फिर से संधिनी शक्ति की बात करेंगे।
संधिनी शक्ति, इसका अनिवार्य अंग शुद्ध सत्व है। कृष्ण का अस्तित्व इसी पर निर्भर करता है।
हाँ, ये पॉइंट फिर से पढ़िए।
इसका अनिवार्य अंग शुद्ध सत्व,
इसका
है।
सार मतलब इसका जो सार है वो क्या है?
शुद्ध सत्व।
शुद्ध सत्व, तो संधिनी शक्ति के सार को कहते हैं शुद्ध सत्व। ये आपने कभी सुना है नाम शुद्ध सत्व? शुद्ध सत्व नाम सुना है? यहां का इस दुनिया में जो सत्व होता है वो मिश्रित होता है, वो भौतिक होता है, परंतु ये दिव्य गुण है, शुद्ध सत्व। तो संधिनी शक्ति का सार है शुद्ध सत्व। और इस शुद्ध सत्व के बारे में क्या कहा गया है?
कृष्ण के माता पिता घर बार,
पहले पॉइंट में है।
अच्छा, कृष्ण का अस्तित्व इसी पर निर्भर करता है।
कृष्ण का अस्तित्व इस शुद्ध सत्व के ऊपर आधारित होता है। सोचिए 10 सेकंड इसके बारे में। भले हम एकदम तेजी से रेलगाड़ी की गति से नहीं जाएंगे, हम आराम से जाएंगे ताकि हम सब इन चीजों को अच्छी तरह से समझ सकें। अभी कोई बताइएगा क्या बताया गया अभी संधिनी शक्ति के बारे में? पहले हम संधिनी के बारे में क्या सुन चुके हैं? इसके पहले संधिनी के बारे में, अभी जो पॉइंट हो उसके पहले, भगवान के अस्तित्व को बनाए रखती है। तो यहां क्या बताया गया है अभी? तो भगवान का अस्तित्व किस पर निर्भर होता है? शुद्ध सत्व के ऊपर। और शुद्ध सत्व क्या है? ये संधिनी शक्ति का सार है। ठीक है, और आगे स्पष्टीकरण किया गया है तो पढ़िएगा।
कृष्ण के माता पिता, घर बार, बिस्तर, आसन इत्यादि सभी शुद्ध सत्व के रूपांतर हैं।
तो सबको जो आध्यात्मिक जगत में है ये भगवान के संधिनी शक्ति के द्वारा बनाया गया है। फिर से बोलिएगा, बोलिए
पूरा
नहीं, अभी जो पॉइंट, दूसरा पॉइंट संधिनी शक्ति के बारे में।
कृष्ण के माता पिता, उनका घर और इत्यादि सब इसी शक्ति का रूप है।
इसी शक्ति का परिवर्तित रूप है या रूपांतर है। ठीक है, हाँ, तो आगे और घुमाइएगा। हाँ, और पढ़िए संधिनी शक्ति के बारे में।
आध्यात्मिक जगत की समस्त विचित्रता का पालन करती है तथा उसे प्रकट करती है।
विचित्रता नहीं, विविधता होना चाहिए।
विविधता,
विविधता लिखा है ना,
विचित्रता लिखा हुआ है।
विचित्रता नहीं, विविधता होना चाहिए। वो जरा काट दीजिए, इसको काट कर विविधता लिख लीजिए। नहीं है पेन है इधर? श्रील प्रभुपाद जी समझाते हैं कि जो इस भौतिक जगत में विविधता है वो आध्यात्मिक जगत के विविधता का एक प्रतिबिंब है। इसका मतलब है कि ये जो अंतरंगा शक्ति अपने परिवर्तित रूप में यहां भौतिक जगत में भी पाई जाती है। ठीक है, अभी आगे घुमाइएगा। अभी संवित शक्ति, कोई पढ़ सकते हैं?
संवित शक्ति, संवित शक्ति का सार यह ज्ञान है कि श्री कृष्ण भगवान है। अन्य सारे ज्ञान तथा ब्रह्म ज्ञान इसके अवयव हैं।
संधिनी शक्ति का सार था शुद्ध सत्व, जिसके ऊपर श्री कृष्ण का अस्तित्व निर्भर रहता है। उसी प्रकार से संवित शक्ति का सार क्या है?
कृष्ण भगवान है
वो ज्ञान।
वो ज्ञान
केवल कृष्ण भगवान है नहीं, संवेद शक्ति का सार वो ज्ञान है कि श्री कृष्ण भगवान है। ये शुद्ध ज्ञान है। जैसे संधिनी शक्ति का भी एक प्रतिबिंब रूप या परिवर्तित रूप यह भौतिक जगत के विविधता में पाया जाता है, उसी प्रकार से ये ज्ञान कि श्री कृष्ण परम सत्य है, भगवान है, ये मूल संवित शक्ति का स्वरूप है। परंतु इसके जो अवयव हैं, बाय प्रोडक्ट्स, वो अलग अलग भिन्न भिन्न प्रकार के जो ज्ञान हैं, जैसे निराकार ब्रह्म का ज्ञान, ये और भी एक प्रतिबिंब रूप में है ये भौतिक ज्ञान, ये सब संवित शक्ति के ही अवयव हैं, उसके परिवर्तित या प्रतिबिंब रूप हैं। सो प्योर नॉलेज, प्योर संवित शक्ति, द एसेंस ऑफ दैट इज द नॉलेज दैट कृष्णा इज द सुप्रीम पर्सनैलिटी ऑफ गॉडहेड। ऑल अदर फॉर्म्स ऑफ नॉलेज, वेदर ब्रह्म ज्ञान और मटेरियल नॉलेज, दीज आर बाय प्रोडक्ट्स ऑफ दिस ओरिजिनल नॉलेज ऑफ दिस संवित शक्ति। ठीक है, तभी आप बताइएगा संवित शक्ति के बारे में। हाँ बताइए, माइक कहाँ है।
हरे कृष्ण। संवित शक्ति का जो सार है वो यह है, श्री कृष्ण मूल सत्य हैं, श्री कृष्ण भगवान हैं।
सार क्या है, सार फिर से बोलिए।
संवित शक्ति का सार यह है कि श्री कृष्ण मूल सत्य हैं, श्री कृष्ण ही भगवान हैं।
सार ये ज्ञान है,
ये ज्ञान, सॉरी, ये ज्ञान है कि श्री कृष्ण जो है भगवान है, मूल सत्य है, और ये जो ब्रह्म ज्ञान या भौतिक ज्ञान है ये इनके अवयव है, अंग है।
बहुत अच्छा, वेरी गुड। ओके, आगे घुमाइएगा। अभी फिर लादिनी शक्ति की बात करते हैं। लादिनी शक्ति,
लादिनी शक्ति, जब यह शक्ति भगवान की कृपा से एक भक्त को प्राप्त होती है तब उसमें भगवत प्रेम प्रकट होता है। इसलिए भगवान, भगवत प्रेम एवं लादिनी शक्ति एक तथा समान है।
आप लिख लीजिए, ये बहुत महत्वपूर्ण पॉइंट है। लिखने के बाद कलम नीचे रखिए, फिर चर्चा के ऊपर ध्यान दीजिए। सबने लिख लिया, अच्छा, इसको पुनः थोड़ा धीरे धीरे पढ़िए अभी, ताकि इसको बहुत अच्छी तरह से हम समझ लें।
लादिनी शक्ति, जब यह शक्ति भगवान की कृपा से एक भक्त को प्राप्त होती है तब उसमें भगवत प्रेम प्रकट होता है।
आगे,
इसलिए भगवत प्रेम एवं लादिनी शक्ति एक तथा समान है।
तो वास्तव में अभी हम जान रहे हैं कि कृष्ण प्रेम क्या है। कृष्ण प्रेम क्या है बताइए आप। माइक दीजिए, वहां माइक पीछे। कृष्ण प्रेम क्या है?
अल्लाह, जब भगवान की कृपा से कोई भक्तों को अल्लादिनी शक्ति
हृदय में स्फुरित करा देते हैं भगवान।
एक भक्त को प्राप्त होती है तो इसको भगवत प्रेम प्राप्त होती है।
तो भगवत प्रेम और लादिनी शक्ति में अंतर क्या है?
इसलिए भगवत प्रेम और अल्लादिनी शक्ति एक ही है, समान
एक ही है, कोई अंतर नहीं है। इसका मतलब है कि प्रेम और आनंद एक है। प्रेम होगा तो आनंद होना चाहिए, नहीं तो वो प्रेम नहीं है। ऐसा नहीं कि कल डाइवोर्स हो जाए फिर वो प्रेम नहीं। दुनिया में कोई प्रेम है नहीं, तो दुनिया का प्रेम प्रेम नहीं है। तो सच्चा प्रेम वो है जिस जो कि आनंद से अभिन्न है। तो अगर सच्चा प्रेम है तो आनंद होना ही होना है, क्योंकि प्रेम का मतलब ही आनंद है। और अगर आनंद है तो इसका मतलब प्रेम होना चाहिए, क्योंकि प्रेम के बिना आनंद नहीं आ सकता। तो ये दोनों एक ही हैं, प्रेम और आनंद। क्योंकि लोग कृष्ण प्रेम के बारे में जानते नहीं हैं, इसलिए वो आनंद को दुनिया के प्रेम में ढूंढने जाते हैं जो उनको नहीं मिलता है। पुनः इसको पढ़िएगा, फिर से आप पढ़िए।
लादिनी शक्ति, जब यह शक्ति भगवान की कृपा से एक भक्त को प्राप्त होती है तब उसमें भगवत प्रेम प्रकट होता है। इसलिए भगवत प्रेम एवं लादिनी शक्ति एक तथा समान है।
तो जब भगवान श्री कृष्ण कृपा करते हैं किसी भक्त के ऊपर और उसके हृदय में लादिनी शक्ति प्रदान कर देते हैं, तो हम कहते हैं कि वो उसके अंदर कृष्ण प्रेम आ गया है। लादिनी शक्ति भगवान की आनंद प्रदान करने वाली शक्ति है, तो आनंद और प्रेम में कोई अंतर नहीं है। अच्छा, घुमाइए और इसका और स्पष्टीकरण करते हैं। तो इसका निष्कर्ष क्या हुआ? निष्कर्ष पढ़िए।
भक्ति क्या है? यह भगवान की दिव्य आनंद शक्ति का प्रदर्शन है।
बस संक्षेप में, यह संक्षिप्त परिभाषा है। तो बताइए भक्ति क्या है? हाँ, भगवान की दिव्य आनंद शक्ति का प्रदर्शन है। बहुत अच्छा। कई भक्त थोड़े हिंदी इतना अच्छे नहीं समझते तो हम अंग्रेजी में भी कह देते हैं। व्हाट इज भक्ति? भक्ति इज एन एग्जिबिशन ऑफ द ट्रांसेंडेंटल प्लेजर पोटेंसी ऑफ द लॉर्ड। नाउ कृष्ण बलराम प्रभु, यू रिपीट इन इंग्लिश। अंग्रेजी में बोलिए अभी आप। भक्ति की परिभाषा अलग दृष्टि से, अभी भक्ति की परिभाषाएं अलग अलग होती हैं। श्रीमद् भागवत में भी है, रूप गोस्वामी भी भक्ति रसामृत सिंधु में कहते हैं, अन्याभिलाषिता शून्यम आदि बहुत परिभाषाएं भक्ति की हैं। लेकिन ये एक अलग ढंग से, अलग दृष्टि से भक्ति की परिभाषा हम सुन रहे हैं। बताइए।
भक्ति इज द एग्जिबिशन ऑफ द प्लेजर पोटेंसी ऑफ द लॉर्ड।
लिटिल लाउडर।
द भक्ति इज द एग्जिबिशन ऑफ द प्लेजर पोटेंसी ऑफ द लॉर्ड
In the heart of the devotee.
In the heart of the devotee.
Correct? हाँ। तो ये है भक्ति। जब भक्त के हृदय में लादिनी शक्ति का प्रदर्शन होता है उसको भक्ति कहते हैं या प्रेम कहते हैं, कृष्ण प्रेम। ठीक है? और कोई बताइएगा ताकि स्पष्टीकरण हो जाए, सब में अच्छी तरह से समझ ली। और कोई बीच में बताइए, इसी बात को बताइए, भक्ति क्या है? माइक दीजिए।
जब किसी भक्त के हृदय में इट्स एन एग्जिबिशन, भक्ति इज एन एग्जिबिशन ऑफ द the pleasure potency of the Lord which appears in the heart of a devotee.
और कोई हिंदी में बताइए पीछे. हाँ पीछे बताइए. भगवान के हाँ बताइए. भक्त के हृदय में
जब भगवान के आनंद का अनुभव होता है.
और स्पष्ट रूप से बताइए. और कोई बताइए स्पष्ट रूप से आराम से. माताएं बताएंगे कोई माताएं कोई चांस नहीं मिलता है बोलने के लिए. आप ऐसे कोई बोलेंगे. अच्छा यहाँ प्रभु को हैं देखे इस साइड में जो अभी तक उत्तर नहीं दिए हैं. हाँ बोलिए माइक यहाँ दीजिए.
हरे कृष्ण. जब भक्ति भक्त के हृदय में भगवान की आलादीन शक्ति का प्रवेश करता है तो उसको कृष्ण प्रेम बोला जाता है.
बहुत अच्छा. जब भगवान की कृपा से किसी भक्त के हृदय के भीतर भगवान के आनंद प्रदान करने वाली शक्ति जिसको लादिनी शक्ति कहते हैं वो प्रवेश करती है तो उसे हम कृष्ण प्रेम कहते हैं. तो कृष्ण प्रेम का उदय इस प्रकार से होता है हृदय में भगवान की कृपा दृष्टि से. ठीक है. अच्छा आगे घुमाइएगा. अभी संक्षेप में तो पढ़िएगा.
लादिनी शक्ति इसका सार भगवत प्रेम है पहला पॉइंट. दूसरा है भगवत प्रेम का सार भाव है. और तीसरा पॉइंट है भाव का चरम विकास महाभाव है.
अभी लादिनी शक्ति का विश्लेषण हो रहा है. लादिनी शक्ति क्या है और कैसे ये भक्त के हृदय में आता है ये हम सुन चुके हैं. अभी लादिनी शक्ति के बारे में और कृष्णदास कविराज गोस्वामी बतला रहे हैं. दोबारा पढ़िएगा.
इसका सार भगवत प्रेम है.
तो लादिनी शक्ति का सार क्या है. भगवत प्रेम. भगवत प्रेम का सार क्या है. भाव. और ये भाव का सार क्या है.
महाभाव.
जोर से बोलिएगा. महाभाव. ठीक है. सबने लिख लिया. तो अभी हम समझ पा रहे हैं कि क्यों कविराज गोस्वामी तीन शक्तियों की चर्चा करते हैं और भक्ति से इसका क्या संबंध है. और याद रखिए हम चैतन्य महाप्रभु के प्राकट्य की बात कर रहे हैं तो अभी आगे चल के भी आने वाला है ये संबंध कि क्यों इस विषय में चर्चा कर रहे हैं वो. ठीक है. अच्छा घुमाइए. तो लादिनी का शक्ति का सार है प्रेम. प्रेम का सार है भाव. भाव का सार है महाभाव. और आगे क्या है. महाभाव से आगे
श्रीमती राधा रानी कौन है. वो महाभाव की मूर्ति रूप है. वह भगवत प्रेम की शिरोमणि है.
तो ये जो महाभाव है इसका मूर्तिमान स्वरूप ये क्या है. कौन है. श्रीमती राधा रानी. जैसे हम दूध लेते हैं गाय का सार है दूध. दूध को भी और आप घना कर देते हैं. घना कर करके कितने सारे चीजें आप बना सकते हैं. स्वादिष्ट से स्वादिष्ट व्यंजन बना सकते हैं. फिर बहुत ही घनिष्ठ रूप उसका होता है. वो बहुत मीठा होता है बहुत स्वादिष्ट होता है. तो उसी प्रकार से लादिनी शक्ति से प्रेम. प्रेम से भाव. भाव से महाभाव. और इस महाभाव का जो मूर्तिमान स्वरूप है वो है श्रीमती राधा रानी. इस बात को कोई समझाइए. अभी आप माइक इनके पास हाथ ऊपर कीजिए. आप जो समझाना चाहते हैं जो अभी तक उत्तर नहीं दिए हैं. श्रीमती राधा रानी कौन है. इस दृष्टि से समझाइए। वो माइक पीछे दीजिए। लादिनी शक्ति और राधा रानी में संबंध क्या है, अभी आप समझाइए।
श्रीमती राधा रानी मां भाव के मूर्त रूप है।
और महाभाव क्या है, शुरुआत से समझाइए, हमें कुछ नहीं मालूम। महाभाव क्या चीज है, भाव का सार है,
भाव का सार।
और भाव क्या है, प्रेम का सार है, प्रेम का सार। और प्रेम क्या है, लादिनी शक्ति का सार है,
लादिनी शक्ति का सार प्रेम,
प्रेम का सार भाव। सारी श्रृंखला फिर से आप आगे बोलिए, अभी पुनः बोलिए।
लादिनी शक्ति का सार प्रेम, प्रेम का सार भाव, भाव का सार भाव का मूर्त रूप,
भाव का सार महाभाव,
महाभाव।
और
महाभाव का मूर्त रूप श्रीमती राधा रानी।
बस बहुत अच्छा। तो इसके बारे में एक चार्ट घुमाएंगे आप जरा इसको। इसलिए श्रीमती राधा रानी को क्या कहा गया था पिछले चार्ट में, प्रेम के बारे में क्या कहा गया,
भगवत प्रेम की शिरोमणि,
भगवत प्रेम की शिरोमणि। क्यों क्यों है श्रीमती राधा रानी भगवत प्रेम की शिरोमणि? हाँ बताइए।
क्योंकि भगवत प्रेम का जो सबसे घनिष्ठ
रूप है,
घना रूप है महाभाव, और उसकी मूर्तिमान रूप है राधा रानी।
तो जो भी भक्ति है वो श्रीमती राधा रानी से आती है। तो अगर हमें भक्त होना है तो श्रीमती राधा रानी की कृपा की आवश्यकता है, नहीं तो भक्ति नहीं मिल सकती हमें। तो ये जो चार्ट है इसमें ये सार आपको मिल जाएगा। पहले क्या है पढ़िएगा।
लादिनी शक्ति का जो पहला चरण है वो प्रेम है,
सार।
प्रेम, प्रेम से भाव, भाव से महाभाव, और अंत में श्रीमती राधा रानी मां भाव की प्रारूप है।
ठीक है। और आगे है इसके, देखिए, या दूसरे चार्ट में होगा, इसके पीछे घुमा के देखिए कुछ है कि नहीं, इसके पीछे है कुछ नहीं, तो ये वाला लगाइए अभी। हाँ कोई मदद करेंगे उनको। अच्छा तब तक फिर से आप बताइए अभी आखिरी पॉइंट कौन सा था, श्रीमती राधा रानी कौन है। हाँ और कोई जिन्होंने अभी तक उत्तर नहीं दिया है, हाँ बताइए। हाँ बोलिए आप।
श्रीमती राधारानी वो है जो अल्लादनी शक्ति से प्रेम, प्रेम का सार होता भाव, भाव का सार होता महाभाव, और महाभाव का मूर्त रूप ही श्रीमती राधारानी।
इसीलिए श्रीमती राधारानी को क्या कहा गया है,
इसलिए श्रीमती राधारानी को
भक्ति और श्रीमती राधारानी का संबंध क्या है,
श्रीमती राधारानी से ही भक्ति
प्राप्त होता है,
प्राप्त हो सकता है।
उनकी तरह उनसे श्रेष्ठ कोई भक्त हो सकता है?
नहीं,
नहीं हो सकता, बल्कि उनकी कृपा पर ही, उनकी कृपा से ही हम भक्त बन सकते हैं, क्योंकि वही तो मूर्तिमान भक्ति है। तो श्रीमती राधा रानी जब हमें दिव्य प्रेम प्रदान करती हैं तो वो तो कोई भौतिक महिला नहीं हो सकती हैं, वो भी तो आध्यात्मिक ही होंगी, जब वो आध्यात्मिक शक्ति की ही रूप हैं। इसलिए हम एक स्पष्टीकरण के लिए प्रभुपाद जी और कविराज गोस्वामी भी स्पष्ट से कहते हैं, ताकि कोई आगे संदेह नहीं करे श्रीमती राधा रानी के बारे में कि श्रीमती राधा रानी कौन है और उनका अस्तित्व कैसे है। हाँ पढ़िएगा।
श्रीमती राधा रानी पूर्ण रूप से आध्यात्मिक हैं। उनके शरीर मन इंद्रियां सभी आध्यात्मिक हैं तथा वे कृष्ण प्रेम में उज्ज्वलित हैं। राधा रानी कृष्ण को उनकी लीलाओं में सहायता देती हैं। कोई भी कृष्ण की दिव्य लीलाओं में उनकी बराबरी नहीं कर सकता।
स्पष्ट है ना ये, तो इसके बारे में चर्चा की आवश्यकता तो नहीं है ना। राधा रानी का शरीर, उनका मन, उनकी इंद्रियां कृष्ण प्रेम से उज्ज्वल रहता है सदैव, तो उनका शरीर कभी भी भौतिक नहीं मानना चाहिए। कई लोग हैं, एक बार हम गए थे दक्षिण भारत में, तो वो हमसे वाद करने लगे। एक व्यक्ति, वो पुजारी थे एक मंदिर में, ब्राह्मण थे, बोलने लगे आप राधा कृष्ण को मानते हो। हम कृष्ण को मानते हैं लेकिन राधा रानी को नहीं मानते हैं। हमने कहा क्यों, तो कहते राधा रानी तो केवल एक गोपिका स्त्री है। हाँ वो गोपिका स्त्री है, परंतु कोई साधारण गोपिका स्त्री नहीं है। इनका वर्णन ऐसे मिलता है कि वो स्वयं लादिनी शक्ति हैं। उनका अस्तित्व पूर्णतया आध्यात्मिक है। उनका शरीर, उनका मन, उनकी इंद्रियां सब आध्यात्मिक हैं और कृष्ण प्रेम से वो उज्ज्वल रहती हैं हमेशा। और कृष्ण लीला में इसलिए शामिल हो सकती हैं और उनके जैसा कोई भक्त नहीं है। कृष्ण को आनंद प्रदान करने में श्रीमती राधा रानी का पहला नंबर है। ठीक है, ठीक है, घुमाइएगा, लिखना है। अच्छा थोड़ा फिर से घुमाइए, पढ़ लेना, थोड़ा सा रह गया लिखने में। ठीक है, आप सबको कुछ ज्यादा भारी लग रहा है या बहुत सिंपल है, सरल है? ठीक है ना। अच्छा अभी घुमाइए। और श्रीमती राधा रानी के बारे में क्या हम जानना चाहेंगे?
श्रीमती राधा रानी कृष्ण प्रेम की रूपांतर हैं। वे कृष्ण के आनंद की एकमात्र स्त्रोत्र हैं। कृष्ण उन चीजों का आनंद नहीं ले सकते जो कि आंतरिक रूप से उनसे भिन्न है।
तो इस बात का स्पष्टीकरण कीजिए। कौन समझाएंगे इस बात को कि कृष्ण उस चीज का भोग नहीं कर सकते जो आंतरिक रूप से उनसे अलग है? इसका क्या मतलब? कि कृष्ण किसी भौतिक चीज में रमण नहीं करते, इसलिए जो भी श्री कृष्ण लीला में शामिल होते हैं, कृष्ण को आनंद प्रदान करते हैं, वो भी उनके आध्यात्मिक दिव्य शक्ति के अंतर्गत आते हैं। भगवान को इस भौतिक शक्ति से कुछ लेना देना नहीं है, श्री कृष्ण को नहीं, विष्णु अवतारों को। वो सदैव तीन गुणों के परे रहते हैं। केवल जो बद्ध जीव होते हैं, जो श्री कृष्ण को भूल चुके होते हैं, वही मात्र भौतिक शक्ति का भोग करने का प्रयास करते हैं। परंतु श्री कृष्ण कभी ऐसा नहीं करते, वो केवल अपने अंतरंगा शक्ति में रमण करते हैं। और श्रीमती राधा रानी ही एकमात्र हैं जो कि पूर्ण आनंद प्रदान कर सकती हैं श्री कृष्ण को। और इसके लिए हम उदाहरण दिए थे पिछली बार, आपने एक उदाहरण दिया था याद है, क्या उदाहरण था, कि श्रीमती राधा रानी ही एकमात्र हैं जो श्री कृष्ण को पूरी तरह से संतुष्ट कर सकती हैं। हाँ जी, हाँ क्या उदाहरण था बताइए। हाँ एक मिनट, अभी माइक आ रहा है तो आप बोल लीजिए।
हरे कृष्णा, श्रीमती राधा रानी जब रासलीला में रुट जाती है तो रास छोड़ के चले जाते हैं, तो कृष्ण देखते हैं कि राधा रानी चली गई, तो कृष्ण को कोई आनंद की अनुभूति नहीं होती, तो कृष्ण भी वहां से चले जाते हैं।
बहुत अच्छा, तो इसका मतलब है कि अगर श्रीमती राधा रानी नहीं होती हैं, तो जितने भी गोपियां क्यों न हो साथ में, श्री कृष्ण संतुष्ट नहीं होते हैं। तो श्रीमती राधा रानी का ये विशेष स्थान है। ठीक है, अभी घुमाएंगे। हाँ पढ़िएगा।
संधिनी शक्ति ये प्रकट होती है कृष्ण के,
नहीं प्रकट होती नहीं, प्रकट कराती है,
प्रकट कराती होती लिखा,
क्या लिखा है वहां,
प्रकट होती है,
होती है नहीं प्रकट कराती है। ठीक है,
हाँ। श्री कृष्ण के सर्वाकर्षण रूप में लादिनी शक्ति प्रकट ये भी कराती है,
कराती है
लादिनी शक्ति प्रकट कराती है श्रीमती राधा रानी के रूप में।
तो हम अभी सुन चुके हैं कि श्रीमती राधा रानी का रूप जो है वो लादिनी शक्ति से आता है, उसी प्रकार से श्री कृष्ण का सर्व आकर्षक रूप कहां से आता है, संधिनी शक्ति से। ठीक है, तो संधिनी शक्ति से श्री कृष्ण का रूप आता है और लादिनी शक्ति से श्रीमती राधा रानी का रूप आता है। इस बात को कौन दोहराएंगे, हाँ बोलिए माइक दीजिए।
संधिनी शक्ति कृष्ण के सर्व आकर्षक रूप को प्रकट कराता है और लादिनी शक्ति राधा रानी के रूप को प्रकट करता है।
बहुत अच्छा, दोनों में से ज्यादा आकर्षक कौन सा है रूप,
राधा रानी।
ठीक है, वो आगे चल के हम देखने वाले हैं। ठीक है, सबने लिख लिया, एक मिनट सबको लिखने दो। ठीक है, अभी आगे कविराज गोस्वामी चर्चा करते हैं, जितने भी कांतागण हैं भगवान कृष्ण के उनके बारे में।
कृष्ण की कांतागण लक्ष्मियां रानियां गोपियां सभी कांताओं में अग्रणी श्रीमती राधा रानी इन सभी कांताओं की स्रोत हैं।
सभी कांताओं में अग्रणी कौन है, नहीं कौन सी श्रेणी, तीन श्रेणियां बताई गई हैं।
गोपियां,
गोपियां तो ऐसे पढ़िए, फिर से पढ़िएगा।
कृष्ण की कांतागण में लक्ष्मियां हैं रानियां और गोपियां हैं, ये गोपियां सभी कांताओं में अग्रणी हैं। श्रीमती राधा रानी इन सभी कांताओं की स्रोत हैं।
ये हम कहां सुन चुके हैं, पहले अध्याय में, किस विषय में, तत्शक्ति ही, याद है आपको, एक में छह और 6 में एक परम सत्य की जब चर्चा हो रही थी, वंदे गुरुन ईश भक्तान, उसी प्रकार से तत्शक्ति ही, तत्शक्ति में भी हम ये चर्चा कर चुके हैं। तो पुनः यहां पर कविराज गोस्वामी इसको दोहराते हैं और अंतिम निष्कर्ष क्या है कि श्रीमती राधा रानी इन समस्त कांतागणों की स्रोत हैं। तो श्री कृष्ण के कितने अवतार हैं, उनके भी विस्तार रूप हैं, साथ साथ ये सब श्रीमती राधा रानी के भी विस्तार हैं। हाँ पढ़िए, घुमाइएगा। तो इसलिए ये और एक निष्कर्ष पर हम पहुंचते हैं जो कविराज गोस्वामी कहते हैं स्पष्ट रूप से। हाँ,
जिस प्रकार कृष्ण सारे अवतारों के कारण हैं, उसी प्रकार राधा रानी इन समस्त प्रेमिकाओं की कारण है।
इन समस्त कांताओं के की कारण है। तो बताइएगा अभी संबंध क्या है कृष्ण के विस्तारों में, श्रीमती राधा रानी के विस्तारों में? बताइए कोई। हाँ बताइए माइक।
जैसे कृष्ण के अनेक अवतार होते हैं और सबके कारण कृष्ण है, तो उसी प्रकार उनके साथ जो कांतागण होते हैं अवतारों के साथ, उसके स्रोत है राधा रानी।
हाँ, अभी कोई उदाहरण दीजिए इसके लिए।
जैसे कृष्ण के अवतार जैसे श्री राम है, तो उसी तरह उनकी जो कांता है सीता रानी, वो राधा रानी के विस्तार है।
बहुत अच्छा, और कोई उदाहरण? हाँ जी,
जैसे भगवान श्री कृष्ण के एक, एक रूप है नारायण विष्णु, तो उसी तरह राधा रानी के विस्तार रूप है लक्ष्मी।
बहुत अच्छा, और कोई उदाहरण? और कोई उदाहरण दीजिए। हाँ जी,
जैसा भगवान का एक अवतार राम भी है और राम जी का जो
राम बताया उन्होंने, और कोई? जैसे ग्वाल बाल सब कृष्ण के विस्तार हैं, उसी प्रकार से जो गोपियां हैं वो श्रीमती राधा रानी के विस्तार हैं। और बताइए द्वारका में। बताइए। हाँ स्पष्ट बोलिए। बोलिए।
भगवान कृष्ण जैसे द्वारकाधीश के रूप में रहते हैं,
थोड़ा जोर से बोलिए।
श्री कृष्ण भगवान द्वारकाधीश के रूप में रहते हैं और उनकी कांता होती है रुक्मिणी देवी, तो रुक्मिणी देवी की जो श्रीमती राधा रानी से उनकी विस्तार रूप है।
जिस प्रकार से द्वारकाधीश भगवान कृष्ण जो कि द्वारका में निवास करते हैं, वो मूलतः श्री कृष्ण से ही आते हैं, उसी प्रकार से उनके जितने भी महिषीगण हैं, रानियां हैं, वो सब श्रीमती राधा रानी से आती हैं। ठीक है? यस। तो भक्ति विनोद प्रभु का प्रश्न ये है कि अगर कोई रुक्मिणी द्वारकाधीश की उपासना कर रहे हैं, तो क्या वो राधा कृष्ण की उपासना मानी जा सकती है? बताइए, आप उत्तर दीजिए। अभी आप बिल्कुल शास्त्रज्ञ हो गए, चैतन्य चरितामृत के सिद्धांतों को आप अच्छी तरह से जानते हैं। हाँ हरि विजय प्रभु, बताइए।
राधा कृष्ण को माना जाए,
थोड़ा माइक नजदीक रखिए।
ये भगवान के एक अंश विस्तार रूप की ही पूजा के माना जाता है, राधा कृष्ण के विग्रह हैं, किंतु उनकी विस्तार रूप का वर्णन की पूजा विग्रह के माना जाएगा, पूरी तरह की पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान कृष्ण रूप में पूजा की माना नहीं जाएगा, कारण द्वारिकाधीश भगवान कृष्ण और रुक्मणी ये उनकी अंश की विस्तार रूप है।
और स्पष्टीकरण करेंगे,
इसमें भाव के अंतर है। जो राधा कृष्ण की जो वृंदा व्रज भाव में जो सेवा होती है और यहाँ पर श्री द्वारकाधीश और रुक्मिणी देवी का भाव जो ऐश्वर्य भाव में है, तो इस भाव में अंतर होता है।
तो फिर द्वारकाधीश और कृष्ण में अंतर क्या है, क्या वो एक हैं या अलग हैं या क्या है?
द्वारकाधीश जो भगवान है वो कृष्ण भगवान के विस्तार रूप है,
विस्तार रूप है, उनके अंश माने जाते हैं, ठीक है। और तो फिर हम द्वारकाधीश की सेवा करेंगे और श्री कृष्ण वृंदावन में जो स्थित हैं उनकी सेवा करेंगे, तो इसमें अंतर किस बात का है?
भाव की,
भाव का अंतर है पहली बात। और दूसरी बात, जो श्री कृष्ण श्याम सुंदर की सेवा करते हैं तो हम अवतारी कृष्ण की सेवा करते हैं, परंतु जब द्वारका में स्थित या वैकुंठ में स्थित कृष्ण की सेवा करते हैं तो वो अवतारी कृष्ण है, भगवान श्री कृष्ण के मूल, उनके प्राकट, उनके अवतार अंश रूप हैं, इसलिए थोड़ा अंतर होता है। परंतु आप राधा कृष्ण की सेवा करोगे तो उनमें सारे विस्तार भी सम्मिलित हैं। तो राधा कृष्ण की सेवा करना मतलब रुक्मिणी द्वारकाधीश की सेवा करना, सीताराम की सेवा करना, लक्ष्मी नारायण की सेवा करना, सब सेवाएं उसमें आ जाती हैं। तो रुक्मिणी द्वारकाधीश की सेवा करने से ऐसे ये नहीं कहा जा सकता कि ये राधा कृष्ण की सेवा नहीं है, परंतु ये रुक्मिणी और द्वारकाधीश दोनों राधा कृष्ण के विस्तार है और अंश है, इसलिए वह पूर्ण रूप से राधा कृष्ण की सेवा नहीं मानी जा सकती, ठीक है। अच्छा, आगे और कोई बात? हाँ, ठीक है, अच्छा आगे घुमाइए फिर। अच्छा, और स्पष्टीकरण करते हैं।
श्रीमती राधा रानी का स्पष्टीकरण इस तरीके से, लक्ष्मिया ये वैभव,
वैभव विलास,
वैभव विलास में आती है।
अच्छा, ये वैभव विलास और वैभव प्रकाश वगैरह, इसके बारे में आप ज्यादा चिंतित मत होइए, इसके बारे में अभी चर्चा हम नहीं करेंगे, ठीक है ना। ये आगे जब सनातन शिक्षा की बात आएगी उस समय जाके हम चर्चा करेंगे, लेकिन कविराज गोस्वामी कह रहे हैं इसलिए हम इसको केवल नोट करके रखेंगे, ठीक है। हाँ, पढ़िएगा।
दूसरा पक्ष रानिया, उनका वैभव प्रकाश है, और तीसरा पक्ष है गोपियां। लक्ष्मियों में राधा रानी की अंश रूप, उनका वैभव प्रकाश का स्वरूप, उनका शारीरिक प्रत्यक्ष विस्तार है।
अच्छा, अभी हम देख चुके हैं कि भगवान के कांतागणों की तीन श्रेणियां होती हैं। कौन सी है तीन श्रेणियां? हाँ,
लक्ष्मिया,
लक्ष्मिया,
रानिया,
रानिया
और गोपियां,
गोपियां। इनमें इनमें से श्रेष्ठ वर्ग कौन सा है?
गोपियां,
गोपियां। गोपियों में से श्रेष्ठ कौन है?
राधा रानी, रानी।
क्यों श्रेष्ठ है?
क्योंकि स्रोत है,
वो अन्यों के स्रोत हैं, तो इसलिए श्रीमती राधा रानी को सबसे ऊपर रखा गया है। श्रीमती राधा रानी से ये तीन प्रकार के कांतागणों के वर्ग उत्पन्न होते हैं, लक्ष्मियां, रानियां, गोपियां। तो जो लक्ष्मियां हैं वो श्रीमती राधा रानी के वैभव विलास कहलाते हैं, अर्थात वो श्रीमती राधा रानी के अंश रूप हैं। लक्ष्मियां श्रीमती राधा रानी के अंश रूप हैं, इनको वैभव विलास कहते हैं। और रानियां कौन हैं? रानियां श्रीमती राधा रानी के वैभव प्रकाश हैं और वो श्रीमती राधा रानी के प्रतिबिंब माने जाते हैं, रिफ्लेक्शन। परंतु हमें जानना चाहिए कि भले यहां पर प्रतिबिंब में और वस्तु में अंतर हो, आध्यात्मिक जगत में कोई अंतर नहीं है। हम एक आम का प्रतिबिंब जल में देखेंगे और उस प्रतिबिंब को उठा के खाने का प्रयास करेंगे, नहीं खा पाएंगे, क्योंकि यहां भौतिक जगत में प्रतिबिंब और वस्तु में अंतर होता है। परंतु आध्यात्मिक जगत में प्रतिबिंब भी सत्य होता है और प्रतिबिंब और वस्तु में अंतर नहीं है। तो जब यहां कविराज गोस्वामी कहते हैं कि जो महिषीगण हैं, रानियां द्वारका की, वो श्रीमती राधा रानी की प्रतिबिंब हैं, तो हमें जानना चाहिए कि ये कोई भ्रम नहीं है, ये सत्य है। उनके रूप भी सत्य है, पूरी तरह से आध्यात्मिक है। जैसे श्रीमती राधा रानी का रूप आध्यात्मिक है पूर्णतया, उसी प्रकार से इन रानियों का शरीर भी दिव्य है हर दृष्टि से। और फिर अंततः गोपियां, गोपियां श्रीमती राधा रानी की काया व्यूह हैं, कविराज गोस्वामी कहते हैं। काया मतलब शरीर, व्यूह मतलब विस्तार। तो गोपियां साक्षात प्रत्यक्ष श्रीमती राधा रानी के शरीर के विस्तार हैं, ठीक है। अंश रूप है, वो भी विस्तार है, परंतु ये ज्यादा गहराई में इस समय हम नहीं जाएंगे, सनातन शिक्षा के लिए राह देखेंगे, ठीक है। परंतु गोपियां डायरेक्ट उनके दिव्य शरीर से विस्तरित हुए हैं, इससे हम जान सकते हैं कि गोपियों का स्थान श्रेष्ठ है। ब्रह्म संहिता में क्या कहते हैं भगवान ब्रह्मा जी? नहीं, लक्ष्मियों के बारे में, गोलोक वृंदावन में कौन है? सेव्यमानम, कौन सेवा करती है? लक्ष्मी सहस्र शत संभ्रम सेव्यमानम। तो जितने भी गोपियां वैकुंठ में, तो एक एक, हर एक वैकुंठ लोक में एक लक्ष्मी देवी होती है नारायण के साथ, परंतु गोलोक वृंदावन में सहस्त्र शत, लाखों वहां पे लक्ष्मियां हैं। लक्ष्मियां मतलब कौन? यहां गोपियां हैं, ठीक है। हाँ,
राधा रानी के रूप में द्वारका दशमी सेवा करती है, तो रुक्मिणी देवी राधा रानी का सप्त भामा का हुआ, ए सॉरी राधा रानी चंद्रावली का है एक्सपेंशन।
अंततः जितने भी गोपियां हैं वो सब श्रीमती राधा रानी से आती हैं, चंद्रावली भी केवल भाव के लिए, केवल लीला के लिए, वो एक उनका वाम और पक्ष अलग होता है। केवल मूल सब श्रीमती राधा रानी से ही आते हैं, इनमें कोई अंतर नहीं, ठीक है। अच्छा, जल्द अभी ज्यादा भारी हो गया, रुके थोड़ी और 5 मिनट चले, क्योंकि ये 5वें श्लोक का हम समाप्त करना चाहते हैं, नहीं थोड़ा समय ज्यादा लगेगा इसके लिए, ठीक है। हम सोच रहे थे 5वें श्लोक का की चर्चा हो जाए, परंतु थोड़ा समय लगेगा। इसके बाद कविराज गोस्वामी जो है एक श्लोक बताते हैं जो बहुत महत्वपूर्ण है, और उसमें श्रीमती राधा रानी के भिन्न नामों का वर्णन करते हैं और हर एक नाम का मतलब बताते हैं। तो राधा रानी की कई नामों के, ऐसे सुंदर नामों का वर्णन आता है, वो कभी और उसकी चर्चा करेंगे। तो अभी आज के चर्चा ज्यादा भारी हो गया आप सबके लिए या ठीक है? कितने भक्तों को बहुत भारी लगा, हाथ ऊपर कीजिए। भारी लगा, लेकिन भारी लगने पर भी कितने भक्तों को बात समझ में आई? ज्यादा, थोड़ा बहुत तो ठीक है। अभी जाके फिर से पढ़िए, हम बहुत धीरे गए अभी इस समय, बहुत धीमे धीमे गति से गए, बार बार दोहरा दोहरा के, ताकि बातों को हम अच्छी तरह से समझ सकें और याद कर सकें। तो कोई प्रश्न है? हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, क्या ने पूछ, आप बताइए। नहीं ऐसे फोन पे प्रश्न आ रहा है, आजकल टेक्नोलॉजी मॉडर्न आधुनिक काल। हरे कृष्णा। हाँ जी, अब माइक पे प्रश्न पूछिए आप। हाँ अच्छा ठीक है। अच्छा अभी प्रश्न ये है कि जो प्रश्न पूछा गया था कि कृष्ण और द्वारकाधीश के बीच में, तो प्रश्न ये है कि हमने ऐसे सुना है कि अवतारों में भेद नहीं करना चाहिए, एक अपराध हो जाता है, तो हमें क्या ये ठीक है या नहीं है? तो अभी आप उत्तर दीजिए, आप में से कोई बताएंगे इस प्रश्न का उत्तर देंगे, कौन उत्तर देंगे? हरि, माइक यहां दीजिए। वैसे इस विषय के बारे में विस्तार में कई पिछले क्लासों में चर्चा हो गई है, फिर भी एक स्पष्टीकरण के लिए और हमारे पुनर्निरीक्षण के लिए आप बताइए।
हरे कृष्णा। इसी में भगवान कृष्ण द्वारिकाधीश,
भगवान माइक पास में रखिए।
भगवान ब्रज में ब्रजेंद्र कृष्ण और द्वारिकाधीश कृष्ण के कोई भेद नहीं, केवल लीला भेद है। इसी हिसाब से हम चर्चा कर रहे हैं, लीला की अंतर विषय भेद दिख रहे हैं, किंतु कृष्ण तो वही है, रूप है, किंतु उनकी लीला भेद है। इसमें कोई अपराध नहीं है जो लीला भेद दिखा जाता है। लीला में ठाकुर जी कैसा लीला होता है?
लीला भेद किस चीज के भेद के ऊपर आधारित होता है?
भगवान की ये ऐश्वर्य लीला और माधुर्य लीला की जो अंतर भेद है,
रस भेद
है, रस भेद है।
लीला भेद आधारित होता है रस भेद के ऊपर, है ना
जी?
तो रस में अंतर है, और इसके लिए हम कौन सा उदाहरण सुन चुके हैं? प्रभुपाद जी कौन सा उदाहरण उपमा दे चुके हैं इसके लिए?
इसके लिए एक सुप्रीम कोर्ट के जज हैं, जो हाँ। जज अपने ऑफिशियल लीला और अपनी घरे लीला, घरे लीला भगवान कृष्ण ब्रज में माधुर्य लीला करते हैं जो, और ऑफिशियल लीला जो है द्वारिकाधीश भगवान है और वैकुंठ में विष्णु रूप है।
बहुत अच्छा। तो जिस प्रकार से एक हाईकोर्ट के जज होते हैं, अदालत के न्यायाधीश, वो जब दफ्तर में रहते हैं, अदालत में रहते हैं, तो उनका एक स्वरूप होता है, और जब वो घर में रहते हैं वही व्यक्ति, उनका व्यवहार कुछ और ही होता है। अभी क्या हम कह सकते हैं कि वो दोनों व्यक्ति अलग हैं या एक हैं? हैं तो एक व्यक्ति, परंतु उनका भाव अलग होता है स्थान के हिसाब से। उसी प्रकार से कृष्ण और उनके भिन्न अवतार एक ही हैं, परंतु रस में उनका अंतर है, भाव में अंतर है। तो ऐसे भेद करना इस दृष्टि से ये अपराध नहीं है, ये केवल तत्व के आधार पर ये हम देख रहे हैं। ठीक है। अच्छा, और कोई प्रश्न किसी का? हाँ पूछिए।
प्रभु जी, जैसे हम तीन विषयों के बारे में चर्चा कर रहे थे, संदिनी, संबित और आह्लादिनी शक्ति, तो इसमें हम सुना कि संदिनी शक्ति को, शक्ति के ऊपर भगवान की जो एग्जिस्टेंस आधारित रहती है, तो एक हम जैसे सुनते हैं कि कृष्ण स्वयं भगवान मतलब पूर्ण स्वतंत्र है, तो इसको चीज थोड़ा समझाएंगे।
हाँ, पूर्ण स्वतंत्र हैं, लेकिन वो शक्ति तो उन्हीं की है ना, किसी दूसरे की शक्ति के ऊपर वो आधारित नहीं है। से हम किसी दूसरे के शक्ति के ऊपर आधारित हैं। भगवान को कहते हैं स्वाश्रय, स्व आश्रय आश्रय, स्व आश्रय आश्रय, वो अपने ही आश्रय हैं, उनको कोई दूसरे आश्रय की आवश्यकता नहीं पड़ती। तो भगवान अपने ही शक्तियों के ऊपर आधारित होते हैं। तो शक्तियां आती कहां से हैं? श्री कृष्ण से ही आती हैं, इसलिए इसमें कोई दोष नहीं है।
अरे कृष्ण गुरु, जैसे आपने बताया कि श्रीमती राधा रानी जो है भक्ति की मूर्तिमान स्वरूप है, और जैसे हम पद्म पुराण में जो भक्ति देवी के बारे में पढ़ते हैं, जो भागवतम के ग्लोरिफिकेशन के बारे में आता है, क्या इस भक्ति देवी में और राधा रानी में अंतर
है? वो विस्तारित रूप है श्रीमती राधा रानी की, और उनमें और तुलसी महारानी में अंतर है। कभी कभी तुलसी पूजा के समय हमारे भक्त बोलते हैं जय तुलसी महारानी, जय भक्ति देवी। ठीक है, भक्ति देवी को गुणगान करना अच्छी बात है, परंतु वो वृंदा देवी से भिन्न है। हाँ, और प्रश्न पूछिए।
भक्ति देवी बोलते हैं वृंदा देवी को।
भक्ति देवी है, लेकिन भक्ति देवी भी वो भक्ति प्रदान करती है, परंतु भक्ति देवी भी है।
तुलसी महारानी क्या अंतर क्या है?
व्यक्तित्व में अंतर है, पर्सनैलिटी। सर्विस इज डिफरेंट, मोर ऑर लेस सबका सर्विस तो एक ही रहता है। जैसे तुलसी महारानी है और वृंदा देवी है, वो एक है या अलग है?
जैसे हम बोलते वृंदा देवी जो है वो सेवा दिलाते हैं भगवान कृष्ण की, जो जुगमाया की शक्ति की।
हाँ, कृष्ण प्रदायिनी। अभी तुलसी महारानी और वृंदा देवी में अंतर है?
वृंदा देवी ही वही तुलसी महारानी रूपे अभी ये धरती में है।
हाँ, तो वही वृंदा देवी प्रकट होती हैं
भगवान की
तुलसी महारानी के रूप में। हाँ, तो इस दृष्टि से, लेकिन मूल रूप से वृंदा देवी है।
वृंदा देवी,
तो ऐसे ही भक्ति देवी। फिर भी कहने में कोई दोष तो नहीं है, क्योंकि वृंदा देवी का भी कार्य यही होता है, तुलसी महारानी का विशेष कार्य यही होता है, कृष्ण प्रेम प्रदान करना। हाँ,
पहला प्रश्न है कि जो जैसे हम कहते हैं राधा रानी लादिनी शक्ति की मूर्तिमान रूप है, तो ऐसे कहा था कि बलराम जी भी संदिनी शक्ति के, ऐसा कहना मतलब कहा जा सकता है? या
बलराम
जी संदिनी शक्ति के मूर्तिमान रूप, इस तरह से अगर कोई कहे तो सही है ये?
बलराम जी शक्ति नहीं है, बलराम जी शक्तिमान है ना। बलराम जी और राधा रानी में अंतर क्या है? दोनों के बारे में कहा जाता है कि वो कृष्ण से अभिन्न है, लेकिन अलग दृष्टि से अभिन्न है। श्रीमती राधा रानी शक्ति हैं और बलराम विष्णु तत्व में आते हैं, वो शक्तिमान के श्रेणी में आते हैं, परंतु श्रीमती राधा रानी शक्तिमान के श्रेणी में नहीं है, वो शक्ति के श्रेणी में है। ठीक है,
जैसे संधिनी शक्ति में हम सुनते हैं कि कृष्ण के घर माता पिता, तो
हाँ, वो बलराम जी, ये कार्य बलराम के द्वारा होता है, बलराम जी के द्वारा ये संपन्न होता है सारा कार्य, तो बलराम जी का डिपार्टमेंट है ये। तो जो भगवान श्री कृष्ण बलराम जी के द्वारा ये सब कराते हैं, सारे आध्यात्मिक जगत का जो आधार है वो बलराम जी के द्वारा होता है। हाँ जी,
भगवान के काम हुए, भगवान का चामर है।
हाँ,
बलराम जी स्वयं विस्तार अपना ही विस्तार करते हैं, या फिर जो है उनके द्वारा जो है विस्तारित किया जाता है शक्ति के द्वारा?
वास्तव में प्रश्न ये है कि संधिनी शक्ति ये भगवान के बिस्तर आदि के रूप में परिवर्तित हो जाते हैं, ऐसा है। और प्रश्न है कि हमने सुना है कि बलराम जी भी ऐसे करते हैं, दोनों सही है, दोनों में कोई अंतर नहीं है। बलराम जी पांचों रसों में श्री कृष्ण की सेवा करते हैं, तो बलराम जी की बांसुरी, भगवान की बांसुरी, भगवान जी की शैया, वो भी बलराम जी अपने शक्तियों के द्वारा ऐसे विस्तार होते हैं। तो बलराम जी ही रहते हैं, लेकिन वो अपनी शक्तियों के द्वारा ऐसे विस्तार कराते हैं, और कभी कभी डायरेक्ट, जैसे गोपियां हैं वो तो डायरेक्ट भगवान श्री कृष्ण राधा रानी के विस्तार हैं, जैसे कोई ग्वाल बाल हैं वो तो डायरेक्ट, या नंद महाराज डायरेक्ट वो श्री कृष्ण के दिव्य शरीर के विस्तार है। तो इस प्रकार से बलराम जी भी ऐसे सारे आध्यात्मिक जगत के आधार हैं, बुनियाद है सारे वैकुंठ जगत के। हाँ जी,
तो जी जैसे एक्सप्लेनेशन दिया जाता है कि बलराम जी का जो उसके बाद फिर शंकरशन उनके फिर चतुर्व्यूह वगैरह हो जाते हैं, तो इसी तरह श्रीमती राधा रानी के जो विस्तार है वो गोपियां हैं, और गोपियों के विस्तार द्वारका महिषिया, और इनके विस्तार लक्ष्मियां, ऐसा बताया, ऐसा ठीक सही है?
यहाँ कविराज गोस्वामी वर्णन कर रहे हैं कि जो महिषिया हैं वो प्रतिबिंब हैं, ऐसे वो कहते हैं, और प्रभुपाद जी समझाते हैं कि प्रतिबिंब में वस्तु में अंतर नहीं है। थोड़ा इस प्रकार से भेद किया है, वैभव प्रकाश और वैभव विलास। जो रानियां हैं वो वैभव प्रकाश हैं, और ये है वैभव विलास जो लक्ष्मियां हैं। ये समझना थोड़ा कठिन है, लेकिन इस समय इसीलिए हमने कहा ज्यादा विस्तार में इस टॉपिक में नहीं जाएंगे, इतना हमारे लिए समझना काफी है इस समय के लिए कि ये सब श्रीमती राधा रानी से आती हैं, सब श्रीमती राधा रानी के विस्तारित रूप हैं। श्रीमती राधा रानी मूल कांता हैं भगवान श्री कृष्ण के, और इनसे ही समस्त अन्य कांताएं उत्पन्न होती हैं, इसलिए वो सर्वश्रेष्ठ हैं सारी कांताओं में से। इतना अब के लिए हम समझ लें तो ये उचित रहेगा, ठीक है? हरे कृष्णा। हाँ बोलिए।
हरे कृष्णा।
हरे कृष्णा।
जब
जब
भक्ति की सीढ़ी की गिनती की जाती है तो वहां पर श्रद्धा शब्द से लेकर प्रेम शब्द आता है, प्रेम तक, तो वहां पर सबसे पहले भाव आता है और भाव के बाद प्रेम, ततो भाव ततो प्रेम, और यहाँ पे आया है कि भाव पहले भाव है और बाद में प्रेम है, भाव सार प्रेम।
ये अलग है, वो अलग दृष्टि से कहा गया है, वो भाव भक्ति का स्तर है
जी,
जिसमें अभी तक पूर्ण सिद्धि की प्राप्ति नहीं हुई है। हालांकि ये भी एक सिद्धि का स्तर है, परंतु पूर्ण सिद्धि प्राप्त नहीं हुई है भाव भक्ति के स्तर पे, वो केवल प्रेमा भक्ति के स्तर में प्राप्त होता है। लेकिन यहां जो भाव है उसका तात्पर्य थोड़ा अलग है, वहां भाव भक्ति की बात होती है, यहां केवल भाव की बात होती है। कृष्ण लादिनी शक्ति का सार ये है प्रेम, प्रेम का भाव, भाव का महाभाव, ऐसे महाभाव केवल केवल श्रीमती राधा रानी को होता, और किसी का नहीं हो सकता। तो उस भाव में इस भाव में थोड़ा हमें भेद करना चाहिए, ठीक है? आदो श्रद्धा ततः साधु संज्ञा, आपने सुना है ना? हम धीरे धीरे क्रम से आगे बढ़ते हैं, श्रद्धा के बाद हम साधु साधु संग में भगवान ले आते हैं, साधु संग में आने के बाद भजन क्रिया, हम भजन साधन करना शुरू करते हैं, उसके बाद अनर्थों का निवारण होता है, उसके बाद फिर निष्ठावान हो जाते हैं, उसके बाद धीरे धीरे से आकर्षण होने लगता है, आसक्ति हो जाती है, रुचि आने लगती है, और फिर उसके बाद भाव के स्तर में आते हैं, और भाव के बाद फिर प्रेमा भक्ति के स्तर में आते हैं। तो जब इसके पहले तक ये साधन भक्ति कहलाता है, फिर जब भाव की अवस्था में आ जाते हैं उसको भाव भक्ति कहते हैं, बाद में प्रेमा भक्ति। तो भाव भक्ति के स्तर में आके जो अष्ट सात्विक विकार वगैरह हम पढ़ते हैं ना भागवत में, जो रोंगटे खड़े हो जाना, कंपन होना वगैरह वगैरह, वो सब भाव भक्ति के स्तर में आ जाते हैं। इस समय में भक्त जो है भगवान का साक्षात दर्शन करने के लिए योग्य हो जाता है, परंतु अभी तक अनर्थ शत प्रतिशत मिट नहीं गए होते हैं, थोड़ा कुछ रह गया होता है, बहुत छोटा। जब प्रेमा भक्ति की अवस्था में आ जाते हैं, फिर प्रेमा भक्ति की एक अवस्था में पूरी तरह से भक्त हृदय से शुद्ध हो जाता है, तो ये जो भाव भक्ति का स्तर है ये तो अभी तक शत प्रतिशत शुद्ध नहीं है, हालांकि सिद्ध भक्ति साध्य भक्ति का ही अंग माना जाता है, परंतु 100% अभी तक नहीं हुआ। परंतु यहां जो भाव का वर्णन आ रहा है वो तो शुद्ध लादिनी शक्ति की बात हो रही है। लादिनी शक्ति का प्रेम, प्रेम का सार भाव, मतलब वो जो राधारानी का जो तीव्र स्नेह है भगवान के प्रति, उसको ये संबोधन करता है। तो उसमें थोड़ा अंतर है। ये भाव भक्ति एक स्तर है, हमारे भक्ति में विकास करने का स्तर है, जो पहला भाव है। ठीक है, ज्यादा टेक्निकल डिटेल में हम नहीं जाएंगे इस समय। भक्ति रसामृत सिंधु में इस बात का आप ज्यादा विस्तार में ज्ञान पाएंगे। ठीक है, थोड़ा सिंपल प्रश्न पूछिए है तो, ताकि हम सब समझ सके। हाँ हाँ जी
प्रभु जी, जैसे आपने ब्रह्मसीता के 29वें श्लोक में बताया, चिंतामणि प्रकर सद्म सुकल्प वृक्ष लक्ष्या वृते सुसुरभिर विपालयन्तम्। तो यहाँ पर तो प्रभुपाद आपने बोला कि गोपियां, सहस्त्रों गोपियां जो है लक्ष्मी भाव में भगवान की सेवा कर रही हैं।
लक्ष्मी भाव में नहीं, ये लक्ष्मियां ही हैं, लक्ष्मियों के उद्गम है, लक्ष्मियों के स्रोत है। लक्ष्मी मतलब वो जो भगवान की ऐश्वर्य शक्ति है, परंतु उनके मूल रूप से लक्ष्मी देवियां वो निवास करती हैं गोलोक में गोपियों के रूप में। इसलिए
यहाँ पे प्रभुपाद ने गोपियां लिखा हुआ है, उसके परपट में लिखा हुआ है।
हाँ,
तो कि गोपियां अथवा लक्ष्मियां, सहस्त्रों लक्ष्मियां अथवा गोपियां सेवा करती हैं।
हाँ, हाँ, तो इसलिए जो लक्ष्मी वहां है वो गोपियां ही है, गोपियों को वहां लक्ष्मी कहा गया है। अब समझ रहे हैं बात, हैं तो गोपियां सब गोलोक वृंदावन में गोपियां ही हैं, परंतु वो लक्ष्मी देवियों के उद्गम है, स्रोत है। जो वैकुंठ में लक्ष्मी देवी पाई जाती हैं वो भगवान की सेवा ऐश्वर्य भाव से करती हैं, परंतु गोपियां जो वृंदावन में हैं, गोलोक वृंदावन में निवास करती हैं, वो ऐश्वर्य भाव से नहीं करती हैं, वो माधुर्य भाव से श्री कृष्ण की सेवा और पूजा करती हैं। ठीक है, अब यहीं पर कथा को विराम देते हैं, काफी देर हो गया। हरे कृष्णा, श्री चैतन्य चरितामृत की जय। श्री कृष्णदास कविराज गोस्वामी की जय। श्रील प्रभुपाद की जय। गौर प्रेमानंदे।